ओम शांति। भट्टी की समापन बढ़िया क्योंकि जैसे ही राजू भाई आते रहे, आतम भाई आते रहे, अशोक भाई भी आए, नजरें ढूंढ रही थी भाई साहब कहाँ है। जैसे ही आज क्लास में देखा, सबके मन में एक खुशी की लहर थी, लेकिन भी था क्योंकि समापन तो वैसे कल ही हो गया था, तो सोच रहे थे क्लास हो ना तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हो इस प्रकार था। तो डोसेस तो काफी मिले, अब लास्ट पावरफुल डोज के लिए तैयार है सभी। तो मैं औपचारिक परिचय में नहीं जाऊंगी, सभी भाई साहब को जानते हैं, लेकिन गीता बहन भाई जी का स्वागत करें, उनसे अनुरोध है।
ओम शांति। बहुत कुछ आप लोगों ने भट्टी में सीख ही लिया है। मैं पावरफुल डोज नहीं दूंगा, मैं एक बहुत अच्छी खुराक दूंगा आपको, ऐसी खुराक जो आप रोज बनाएं और खुद खाएं, दूसरों की खुराक की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पसंद है? जीवन एक लंबी यात्रा है, इसमें वो मनुष्य बहुत सुखी है जो अपने विचारों को महान रखता है, ऊंचे विचार, हाई थिंकिंग साथ में। हम जान ले, ऊंचे विचार किसे कहते हैं? छोटे विचार हैं मैंपन वाले, और बड़े विचार हैं स्वमान वाले। सभी अपने जीवन में आप ध्यान रखेंगे कि हम महान विचारों से अपना श्रृंगार करते रहें। महान विचार कहाँ मिलते हैं हमें? मुरलियों में। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा काम देना चाहता हूँ, अब का नहीं, आप कुछ दिनों में करें वो। मैं अपने पास वो काम सदा ही करता रहा हूँ कि मुरलियों से कुछ बहुत सुंदर बातें अलग से नोट करके रखें। सुंदर, हर एक की सुंदर बातें अलग होती हैं। किसी को कोई बात बहुत प्रिय लगती है, किसी को कोई। प्रिय लगने का अर्थ है वो पॉइंट जो हमारे चित्त को शांत कर दे, वो पॉइंट जो हमारी उलझनों को खत्म कर दे। जीवन में बहुत कुछ आता रहता है क्योंकि ये अंत है। अंत में हमें सब हिसाब किताब चुक तो करने हैं, साथ में हमारे चारों ओर बैड एनर्जी है। समझते हैं ना, ये सब बैड एनर्जी है, बुरे वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे अंदर आते रहते हैं। अगर हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं हैं, तो हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते रहेंगे। तो ऐसे सुंदर विचार आप कम से कम 50 अपने पास लिखें। एक दिन में लिखने की जरूरत नहीं, भले ही 50 दिन में लिखें। वो आत्मा के पास ज्ञान का शस्त्र होता है। मान लो, देखो संगठनों में जो कुछ होता है आप सब उससे परिचित हैं, एक छोटे घर में भी होता है, वो टकराव हो जाता है। हम उससे मुक्त रहें, ऐसी कई बातें मुरलियों में आती हैं। और कहीं टकराव हो गया तो उससे कैसे न्यारे रहें, ऐसी बातें मुरलियों में आती हैं। कहीं कोई बड़ी समस्या आ गई, हमें बाबा का साथ लेना है, तो कुछ बातें बाबा ने कही हैं बहुत सुंदर, उनको हम नोट रखें। हम जैसे ही वो पढ़ेंगे तो वो बल मिलेगा हमें और हम बाबा का साथ ले सकेंगे। जैसे आज बाबा की मुरली में एक बात थी, स्वर्ग के राज पर तुम्हारा हक है, ऐसे ही बाबा क्या करते हैं, बाप पर भी तुम्हारा अधिकार है, और बाबा हजार भुजाओं सहित तुम्हें मदद देने को हर समय तैयार रहता है। अगर हमारे पास ये लिखी होगी बात, तो हम पढ़ेंगे याद आ जाएगी, और नहीं लिखी होगी तो हम सब जानते हैं कि विघ्नों के समय मनुष्य की विवेक शक्ति बहुत नष्ट हो जाती है ना, कुछ भी याद नहीं रहता, उल्टा चलता है सब। तो लिखना बहुत आवश्यक है, इस पर आप ध्यान देंगे। 50 पॉइंट्स का एक सुंदर अपने लिए खजाना आप रखें। मैं हमेशा लिखता हूं, मैंने कहा जैसे मैं एक पॉइंट कई साल अपने पहले पेज पर लिखता रहा है, डायरियों की आखिरी में भी लिख देता था और कहीं भी लिख देता था, तुम बाप की याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बहुत सुंदर लगती थी मुझे बात कि हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते रहते हैं। पसंद है ये बात? इससे विचार महान होंगे। हम बहुत सारी छोटी बातों से बच जाएंगे। दूसरी बात, आप सबकी इस पे क्लास अवश्य हो गई होगी, अपने जीवन का कुछ लक्ष्य लेकर ही चलें। लक्ष्य के बिना जीवन न चल रहा हो, समझते हैं ना इस बात को? पूरा खोल के बता दूं, सेंट्रो में बहने रहती हैं कुछ समय के बाद, योग किया थोड़ा बहुत, सेवा की, बहुत बिजी हैं सेवा में, दिनचर्या पूरी हो गई, आत्मा खाली रह जाती है। बहुत सारी बहनें बात करती हैं, मैं बाहर जाता हूं तो जिंदगी में मजा नहीं आता, क्योंकि आनंद तो अतीन्द्रिय सुख में है ना, जो आज बाबा ने कहा, उसके बिना हमें चाहे मान सम्मान मिल जाए, चाहे आप 10 सेंटरों की इंचार्ज बन जाए आगे चल के, आत्मा तृप्त नहीं होती उससे। इसलिए जीवन में कोई सुंदर लक्ष्य लेकर चले। देखो, सुंदर लक्ष्य ही नहीं कहते हैं, मुझे खुश रहना है, ये एक लक्ष्य है। हम कभी कभी अपने भविष्य लक्ष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो नहीं, वर्तमान का, मुझे खुश रहना है। दूसरा ऐसे ही लक्ष्य हो सकता है जो बहुत सुंदर धारणा है बाबा की, मुझे संतुष्ट रहना है। छोटे छोटे आप लक्ष्य कुछ कुछ दिन के लिए बना सकते हैं, 3 मास के लिए बना दिया, कोई बड़ी बात है 6 मास के लिए बना दिया। देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत पहले एक चीज को जीतने के लिए 3-4-5 साल पूरा ध्यान रखा, अभ्यास किया। नो फीलिंग, बाबा की मुरलियों में आता था, फुल अर्थात फीलिंग नहीं, परफेक्ट वो हैं जो किसी बात के इफेक्ट से परे हैं। तो ये बात मुझे बहुत प्रिय लगती थी, और फीलिंग तो आती थी, तो मुझे लगता था ये फीलिंग तो ठीक नहीं है अपनी। पीछे बाबा की मुरलियों में अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो मैंने इस पे 5 साल वर्क किया, फीलिंग को समाप्त करना है। क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, आ गई तो जल्दी जानी चाहिए, उसके लिए पॉइंट्स, उसके लिए नशे की बातें, खुशी की बातें, हल्का रहने की बातें, ऐसे जीवन का लक्ष्य। और ये सब लक्ष्य एक ही लक्ष्य में भी आ जाते हैं कि हम योग युक्त जीवन बनाएं, इस एक लक्ष्य में ये सारे आ गए। और इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, जो बिल्कुल सरल हो सकती है, अगर आप 15 दिन केवल उस पर ध्यान दें, आपको सिखाया गया होगा, मुझे पता नहीं क्या क्या आपको बताया, आप अपनी दिनचर्या को कर्म के अनुसार 10 भागों में बांट लो। मान लो सेंटर में आपको कपड़े धुलने हैं, आपको सेंटर की सफाई करनी है, या आपको किचन बर्तन साफ करने हैं, आपको भोजन बनाना है, जो जो आपकी ड्यूटी लग जाए ना, सभी काम करने चाहिए खूब। कभी सोचना नहीं चाहिए हम झाड़ू पोछा क्यों करें, हम ये काम क्यों करें। काम से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, स्थिति से बड़े छोटे होते हैं ना कोई भी आत्मा। हम लोगों तो को तो दादी ने कह दिया था मधुबन में कि भाई दादी की इच्छा है किचन में ये नौकरानियां ना आए। हमने कहा, हम दादी की हर बात पूरी करते थे, हमने कहा ठीक है दादी हम खुद करेंगे सारी सफाई। तो जैसे ही खाना बनता था 11:30 हम पूरा करते थे, तो 5-7 जितने भाई होते थे ना वहां, सब वो मोटी झाड़ू लेके धुलाई करते थे पानी से, पानी डाल के अच्छी तरह रोज, और पानी एक दूसरे के ऊपर भी डालते थे, छोटे होते थे सब। और उसका पॉजिटिव अनुभव ये होता था कि जो थकान हुई थी ना सवेरे से वो खत्म। तो हमें लगा ये तो बाबा ने बड़ा अच्छा काम दिया, नहीं तो 11:30 काम करके जाते थे, इच्छा होती थी सो जाएं, क्योंकि तब लकड़ियों पे भोजन बनता था ना, आग जलती थी, धुआं होता था, थकान होती थी, साधन कुछ नहीं थे जो आजकल साधन है, ये हाथ वाली ट्रॉली सी भी नहीं थी, सब हाथ से उठाना। लेकिन उस सेवा ने पूरी थकान मिटाई। तो ऐसे सब सेवा करनी चाहिए, हर सेवा का आनंद लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन में सीख लिया था हर सेवा का आनंद, बहुत मजा आएगा आपको, चाहे कुछ भी कर रहे। तब तो हमें सब काम करने होते हैं ना, लकड़ी दूर पड़ी है सबको लानी है वहां से, पानी बहुत दूर दूर से बाल्टियों से लाना था, अब तो खोला और पानी आ गया, माचिस डाली आग जल गई, तब ये सब कुछ नहीं था, बहुत सेवा मेहनत की थी, मजा आता था। हर कर्म का आनंद, हर परिस्थिति का आनंद। देखो मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल घटना है पर कहानी के रूप में सुनाता हूं। हम किसी परिस्थिति को परिस्थिति समझते हैं या खेल समझते हैं, घटना सच्ची है। एक भाई सेवा करके रात को 10 बजे आता है भोजन के लिए, सेवा बहुत थी, कॉन्फ्रेंस चल रही है, खाने पीने का ऊपर नीचे हो रहा है। वो 10 बजे आता है तो क्या देखता है, जरा सी सब्जी पड़ी है नीचे, वो भी ठंडी हो गई, खिलाने वाला तो कोई है नहीं, बस रोटी पड़ी है 5-7 वो भी टूट गई है। वो ये देखते ही परेशान हो जाता है, क्या यहाँ सेवा सेवा, बस कोई ध्यान नहीं देता, खाने पे भी ध्यान नहीं देता, ये कोई जीवन है क्या, ये वो परेशान हो गए, थाली वापिस रख के सोने चला जाता है, नींद तो आएगी नहीं, परेशानी, सोचता है बस जल्दी कॉन्फ्रेंस पूरी हो, मैं तो जाता हूँ, अब से कभी नहीं आऊंगा यहाँ सेवा में। यही स्थिति एक दूसरे के सामने है, वो भी 10 बजे के बाद आता है, वही स्थिति है, थोड़ी सी सब्जी दाल बची है बस, ठंडी हो गई है, रोटी टुकड़े हो गए, रखता है, वो बाबा को थैंक्स देता है, वाह बाबा मैं सबसे बाद में आया तो भी तुमने मेरे लिए भोजन रखा, रोटी भी रख दी, वो भी तोड़ के, ताकि मुझे तोड़नी ना पड़े, कितने अच्छे हो आप, आपके महाराष्ट्र में तोड़ के दे देते हैं ना वो ज्वार की बड़ी बड़ी, वो खुश होता है, उसको आनंद आता है, खा के और मजे से सोता है, गहरी नींद आती है, सवेरे उठ जाता है फिर सेवा में। परिस्थिति कुछ नहीं है, केवल सोचने का नाम, सोचने का नाम। हम इन चीजों से बहुत गुजरे, मैंने बताया मधुबन में बारिश में लकड़ी बाहर पड़ी रहती थी, उनपे बारिश होती थी खूब, जितनी बारिश होती थी वो लकड़ियों पे होनी है, खुले में पड़ी है, उनसे ही हमें भोजन बनाना है। सवेरे चाय बनाने आता था मैं, तब 4 बजे चाय मिलती थी, 3:30 में आता था, लकड़ी जल नहीं रही, आनंद की विश्वसन दादा आ जाता था, सबसे पहले चाय पीने आता था, वो मेरी मदद करता था, कागज हम रखते, तब यज्ञ में कागज भी नहीं थे, आप समझ सकते हैं कागज भी नहीं थे कि उन्हें हम जला दें, अखबार एक आता था बस वो भी इकट्ठा किया जाता था ताकि रद्दी में बेच दिया जाए, वो हमें नहीं मिलता था कि आप इससे आग जला लेना। तो धुआं लगता था बहुत, कपड़ों में बदबू हो जाती थी, तो हम सोचते थे इसमें बहुत आनंद है। मैं सोचता था गर्मी लगती है ना, धुआं लगता है, आंखें साफ हो जाएंगी, सदा कभी दवाई नहीं डालनी पड़ेगी आंखों में, ये धुआं दवाई का काम करेगा। गर्मी लगती है, धर्मराज के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, सारे कुछ पाप योग से कुछ इस अग्नि से दोनों से कट जाए। तो आनंदित रहते थे हम, सोचते ही नहीं थे ये नहीं है ये हो, कोई हमें मदद करे, ये साधन हो, साधन तो थे ही नहीं, लाए कहां से, वहीं से कुछ ना कुछ करना है। रात को लकड़ी ला के वो जो गीली है चूल्हे के ऊपर रख जाते थे ताकि थोड़ी बहुत सूख जाए, कर वो सूख जाती थी तो ठीक जल जाती थी, नहीं सूखी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो परिस्थिति कुछ नहीं, सोचने का नाम, याद रखेंगे आप। और जीवन में एक चीज में और पक्की करा देना चाहता हूं आपको, निर्णय एक ही बार लिया जाता है, भगवान को वचन एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं, क्योंकि ये शक्ति ये संस्कार 84 जन्म काम आएगा हमारे। हम ये जान लें एक एक छोटी बात संगम युग की 84 जन्मों के लिए विधान बन रही है। किसी में दूसरे को सहयोग देने की आदत है, वो हर जन्म सहयोग देते रहेंगे। सतयुग में तो काम होगा ना, या देवता कुछ नहीं करेंगे, काम तो होगा ना। अब देखो आप कपड़े तो पहनने हैं सबको, अब आप ये देखो कपड़ा पहनने तक कितना काम है उसमें। हम तो पहन लिया कपड़ा, यज्ञ से साड़ी आपको मिल गई, पहन रहे, आपको क्या पता साड़ी कैसे बनी। अब आप सोचो अगर साड़ी कैसे बनी तो आपको पता चलेगा कितने लोग लगे हुए इस कारोबार में। कपड़े का कारोबार दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि ये निरंतर चाहता है मनुष्य को, कोई पैदा कर रहा है, किसान उसको ला रहे हैं, व्यापारी उसको बेच रहे हैं, उससे धागा कोई मशीनें बना रही हैं, कहीं उससे कपड़ा बन रहा है, कहीं उससे फिर प्रिंटिंग डाइंग हो रही है, रंग दिया जा रहा है, फिर वो बाजार में जा रहा है, उससे बिजनेस हो रहे, होलसेल से बाजार में, बाजार से हमारे पास, हमारे पास से टेलरिंग में, कितना काम है। तो ऐसे ही थोड़ा ही कि काम नहीं होगा। सतयुग में एक दूसरे को सहयोग करेंगे देवता बिना कहे, जो यहाँ सहयोग देने का संस्कार अपनाएंगे। एक बहुत बड़ा संस्कार है हमारा सुंदर देने का, जिसमें ये संस्कार आ गया वो जन्म जन्म देंगे, लेने की इच्छा ही नहीं होगी, और देंगे तो उनके भंडारे भरपूर होंगे, देते जाएंगे वो चलता रहेगा बहुत अच्छा। हाँ चलाओ भाई, बंद ना करो, कोई प्राइवेट बात नहीं है। तो इस तरह हम सभी अपने एक एक चीज पे ध्यान दें, समस्या को समस्या समझें ही नहीं, खेल। मैं आपको कह रहा था भगवान को वचन भी एक बार दिया जाता है और जीवन का निर्णय भी एक बार होता है, बार बार नहीं। अगर कोई बार बार करेगा तो इसका इफेक्ट चारों युगों पर आएगा। भगवान को वचन देकर कोई वापस लेता है तो उसके वचनों पे कोई भी विश्वास नहीं किया करेगा जन्म जन्म। तो एक एक चीज सूक्ष्म रूप से प्रभाव डाल रही है आत्मा पर। तो हम सभी पक्का करें, एक बार निर्णय ले लिया, देखो क्या होता है समर्पित वालों के साथ, निर्णय लिया दो चार साल सेंटरों में रहे, ये आपकी बात नहीं, ये भाइयों की बात है, फिर 5-7 साल के बाद मजा नहीं आया, अब सोच रहे हैं अरे यार समर्पित होके गलती कर दी, वैसे ही अच्छे थे, न इधर के रहे न उधर के रहे, देखो वो भी अच्छा वो भी अच्छा, वो अपने साथियों को देखेंगे ना लौकिक, ये भी अच्छे वो भी अच्छे, हम तो वही अच्छे थे, यहाँ तो बंधन हो गए, ये वो, अपना खुला विकास भी नहीं कर सकते, कितनी परेशानियां हैं। तो क्या होगा इससे, क्या नुकसान होगा, हो गया, क्या नुकसान होगा? सोचो, आत्मा निर्बल हो जाएगी। दृढ़ता में बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार समर्पित हो गए ना, हो गए बस। उसके बाद इस संबंध में सोचना नहीं है, सोचना है तो कुछ और सोचना है आगे बढ़ने का, कि हमारा ये समर्पित जीवन सफल कैसे हो। साथ साथ मैं आपको एक चिंतन और देता हूं, जिस चिंतन ने मुझे बहुत बल दिया है, जो चिंतन में पहले 10 साल बहुत रखा अपने जीवन में। हमारा त्याग निष्फल न जाए, चिंतन रखना। त्याग किया है तो सब कुछ पाकर ही जाएंगे, सबका त्याग है। हो सकता है आपको अपना त्याग न लगता हो कि हमने कोई त्याग किया, लेकिन आप सबका बहुत बड़ा त्याग है। देखो, एक कन्या की बात सुनाओ, आपको पता चलेगा कैसे आपका त्याग है। वो पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा सेंटर में भी रहती थी, अभी हो गई बड़ी, हमारे लौकिक उधर की है। तो मैं गया अभी, तो क्या कहती वो, भाई मुझे इच्छा होती है मैं भी बाल कटाऊं, मैं भी रंगीन कपड़े पहनूं, मैं भी थोड़ा घूम फिर के आऊं कहीं, सब तो बहुत घूमते हैं, हम घूमते ही नहीं। तो देखिए, त्याग हो गया ना बहुत बड़ा, अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा त्याग है। केवल घर त्याग की बात नहीं, इसलिए अपने त्याग को खुद वैल्यू देनी है। और वैल्यू देने का अर्थ है कि त्याग करके सब कुछ प्राप्त करना है, जीवन पूरी तरह संतुष्ट कर देना है। समर्पित हुए हैं, संतुष्ट। कभी जीवन में बीमारियां आ जाएं, आपके साथी ऐसे मिल जाएं जो रूखे हों, आपके साथी ऐसे मिल जाएं जो आपको आनंद ना आए जीवन में, आपको लगे बहुत मुश्किल हो गई जीवन की यात्रा, क्या करेंगे? इसी रूप से आपसे पूछा और इसी रूप से आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको आ सकती हैं। जब ज्ञान सरोवर बना तो मैं सब भाई, क्योंकि समर्पित होने आए थे 400 भाई आए थे यहाँ, 200 उनमें से हुए, मैं सबको सिखाया करता था। तो बहुत अच्छी क्लासेज यहाँ होती थी, यही हॉल था कि मान लो कल तुम किसी के साथ काम करने लगो, तुम हो बहुत पढ़े लिखे, यहाँ पढ़े लिखे भाई बहुत आए थे, और तुम्हारा इंचार्ज हो बिना पढ़ा लिखा, तो तुम कैसे चलोगे उससे? ऐसा बहुत जगह होता है। मैं उन्हें कहता था, मान लो तुम में तो बहुत योग्यता है और तुम्हारा जो इंचार्ज है वो कुछ नहीं जानता, फिर भी तुम्हें डांटता है, तुम कैसे रहोगे? ऐसी बातें जीवन की यात्रा पे रोज आएंगी। क्या सोचना है? जीवन में सबसे ज्यादा महत्व तो श्रेष्ठ स्थिति का है और किसी चीज का नहीं। श्रेष्ठ स्थिति माना अपना ज्ञान और योग, अपनी आंतरिक शक्तियां, अपना स्वमान, अपनी प्योरिटी, अपनी खुशी, अपना आनंद, महत्व इसका ही है सबसे ज्यादा। बाकी सब चीजों को हल्के रूप से लेना है। आप चिंतन करेंगे इस धारणा पर, जीवन की सर्वोत्तम धारणा है सरलता, हल्कापन, सर्वश्रेष्ठ धारणा। तो आप चिंतन करते हुए अपने जीवन को महान बनाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि दिनचर्या को आप 10 भागों में बांट लेंगे, 10, 12, 8, जो भी आप चाहें, और एक चीज फिक्स करेंगे कि इस क्रम में ये अभ्यास, इस क्रम में ये अभ्यास। ये सिंपल तरीका होगा योग युक्त जीवन बनाने का। भाई बर्तन मांजने हैं तो हम ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा करावनहार हूँ, हाथों से काम करा रही हूँ। सफाई करेंगे तो हम कुछ याद करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। और कुछ समझ में ना आए स्वमान रख लेना, किसी कर्म में हम याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब बहुत अच्छा एक अनुभव करना, मान लो आपको भोजन बनाना, आप अकेली हैं, काम ज्यादा है, तो आप संकल्प करना मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। देखना काम जल्दी होता है क्या, अनुभव करना, क्योंकि ये बात कहने से किसी की समझ में नहीं आएगी, पर ये आपको अनुभव होगा कि दो भुजाओं की अपेक्षा आठ भुजाओं से काम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। स्थूल में भले ही आपको दो ही हैं, पर ये बड़ी सूक्ष्म गति है। एक माता से मैंने कराया, वो भोजन बना रही थी, मैं एक जगह भट्टी में था, उसको वो मेरा भोजन बना रही, फिर वो दोपहर में अपने घर जाती, अपने परिवार वालों का भोजन बना के साढ़े चार तक फिर उसको आना था। बहुत लगन थी उसको भट्टी की भी और सेवा की भी, कहा बहुत काम है। मैंने उसे कहा जस्ट एक अभ्यास करो, हजार भुजा वाले बाबा का आह्वान करना कि हजार भुजाओं सहित मेरे पास आ जाओ। पहले दिन उसने बताया कि तो फटाफट काम हो गया, मैं साढ़े चार के बजाय चार बजे वापस आ गई। कहा ना थकान हुई, मुझे पता ही नहीं चला सब काम कैसे हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जिन्हें समझना भी है, लेकिन पहले अनुभव करना है। तो इस तरह आप सभी अपना अपना चार्ट बना के चलो। देखो एक वो चार्ट होता है, ये किया नहीं किया, ये किया नहीं किया, उसमें लोग बोर होते हैं। मान लो कोई लिखे टाइम वेस्ट किया, रोज ही लिखेंगे किया, हर एक का टाइम रोज वेस्ट होता है, संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका टाइम वेस्ट ना होता हो। दो चार दिन लिख के क्या सोचेंगे, ये लिखना भी टाइम वेस्ट है, छोड़ो इसको भी छोड़ दो, क्या कर रहा है। इसलिए चार्ट बनाओ अपने कर्म अनुसार भिन्न भिन्न योग। किसी कर्म में मान लो बहुत सिंपल कर्म आप कर रहे हैं, अभ्यास करना जैसे बाबा को देख ही रहे हैं परम धाम में, बस उसको देख रहे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। किसी कर्म में मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, किसी कर्म में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, किसी कर्म में बाबा की किरणें पड़ रही हैं, बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी कर्म में अभ्यास कर लिया मैं आत्मा स्तन में आई हूँ, जरूर नहीं सारा समय करते रहे। मान लो आपको एक घंटा सफाई करनी है, एक घंटे में दस बार याद कर लो मैं आत्मा स्तन में आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ सफाई कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा आत्म संतुष्टि का। पक्का कर दें आप, आत्म संतुष्टि आपको करनी है, तो न कहीं बुद्धि जाएगी, सब कुछ बैलेंस में रहेगा, लौकिक वाले भी खुश रहेंगे, अलौकिक में आपके साथी बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस जीवन में कम सफल होती हैं, तो आपके लौकिक वालों को चिंता होगी ना, आपको शायद इस बात का पता न चलता हो, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनकी कन्याएं सफल नहीं होती सेंटर में, बहुत, इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। इसलिए आप लक्ष्य रख लो, एक बार निकल पड़े अब यात्रा पूरी करके ही लौटेंगे, उससे पहले नहीं। अपने से बात करो, यात्राओं में कठिनाई होगी, तैयार कर दो अपने को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की यात्रा बिना कठिनाई के चले। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि हम कठिनाइयों को कठिनाइयां न माने तो वो कठिनाई है नहीं, हम उसका आनंद लें, ये बात आप पक्की करो। अब मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जो आजकल मैं विशेष रूप से सबको सिखा रहा हूं, संकल्प शक्ति की बातें, जिससे बहुत सुंदर अनुभव सब जगह रहते हैं। और आप, क्योंकि आपके पास, चाहे आप छोटी टीचर हो चाहे आप बिल्कुल छोटी हो, आपके पास माताएं भाई जरूर आएंगे, हमारी ये समस्या है क्या करें, हमारी ये समस्या है क्या करें, देखो कल मैं अहमदाबाद आया तो एक ही व्यक्ति ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं 12 बजे आ गया, मैं सोचा 2 घंटे सो के मैं फ्रेश हो के चलता हूँ घर की तरफ। घंटी बजती रही, मैंने फोन की घंटी भी हटा दी तो दरवाजा खटखटाते रहे। फिर जब वो मेरे पास आ गया तो मुझे लगा कि जब पहला फोन की घंटी बजी मैं तभी इसकी बात सुन लेता। क्या था? उसकी पत्नी उसे बहुत तंग कर रही है, मरने को तैयार। वो बेचारा सेंटर में आया है, क्या करूं वो जानना चाहता है। मैं थोड़ा सा ही सोया था तो मुझे उठाया उसने, दो भाई और आए लोटस हाउस के। अब मैं नींद से तो उठा, नींद गहरी हुई थी लेकिन थोड़ी सी हुई थी, उठा। मैं उसकी बात सुनी, मेरी समझ में ना आए कि क्या करूं, क्या बताऊं इसको हल। कहा इतना बुरा हाल किया हुआ है, कहती बस नस काट लेती हूं अभी, मरती हूं। हंगामा ही हंगामा। और इसके भी दो भाई, उनको तैयार कर लिया कि चलो लोटस आउट में हंगामा करेंगे जाके। ये ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखा रही हैं, घरों में अशांति करा रही हैं, पुलिस को ले चलेंगे ये वो, क्या बताऊं क्या करें। तो एकदम ना मुझे बस, मैं बाबा से पूछा कि क्या बताऊं इसको, मुझे अनुभव बहुत अच्छे हैं। थोड़ी बस जल्दी 20 सेकंड में एक बहुत अच्छा विचार आ गया कि इससे ये कराओ। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ उसका। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, संकल्प करो अब उस आत्मा का चित्त शांत हो जाए। मैंने उसे कहा आधा घंटा बाबा के रूम में बैठ जाओ, थोड़ा योग करो। योग तो लगता नहीं था बेचारे का, बहुत परेशान हो गया था, सारा दिन कुछ खाया भी नहीं, सेंटर में आके खाया, इधर उधर घूम रहा, क्या करूं क्या करूं, एकदम मुश्किल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस आत्मा का चित्त शांत हो जाए। मैंने कहा योग करके 108 बार ये याद करो फिर घर जाना। शांत हो गया। तो सभी बहुत अच्छी एक तो चीज ये सीख लें, खुद भी करेंगे, रोज रोज करने की है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इससे संकल्प सिद्ध होते हैं। ये बाबा के ही महावाक्य हैं। बहुत अच्छी तरह आप इसके अनुभव करो। हंसी की बात सुना देता हूं। मान लो आपसे कोई जरा सी गलती हो गई और आपको लग रहा है दीदी डांटेगी, आप 21 बार संकल्प कर जाओ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, अब दीदी का चित शांत हो जाए, मेरे से बहुत प्यार से मिले, परिणाम देखना। ये आपके फेवर की बात है, बहुत आनंद आएगा आपको। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं संकल्प शक्ति से करने लगो। कहने से करने से मुश्किलात होती है कई जगह, संकल्प शक्ति से आप करो, बहुत आनंद आएगा। एक चीज और जो मैं आपको सिखाऊं, जो आजकल के समय में दुनिया में भी लोग बहुत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहरी जो मनोविज्ञान का ज्ञान है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट। लोग थोड़ा बहुत सिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। मैंने सुना 50,000 एक एक लेक्चर के, और लोग देते हैं लेकिन उतना सुख नहीं मिलता जितना हमें मिलेगा। वही बात बिल्कुल थोड़े से में मैं आपको बता देता हूं। हमारी संपूर्ण शक्तियां रहती हैं मन में। शक्ति कहाँ है? मन में। ज्ञान विवेक रहता है बुद्धि में। ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब हमारी मन की शक्ति दुनिया वालों की मन की शक्ति से बहुत ज्यादा है, सबको पता हो। जिन्होंने पवित्र जीवन अपनाया, जो योग करते हैं, जो स्वमान का अभ्यास करते हैं, उनकी मन की शक्ति दुनिया वालों से कितनी ज्यादा? कम से कम 100 गुनी, कम से कम। और कोई बहुत अच्छा करते हो तो उतनी ही ज्यादा। पर एक सिंपल लाइफ में भी जिन्होंने पवित्रता अपनाई, जो थोड़ा भी याद करते हो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, और योग करते हों तो हमारी शक्तियां सबसे ज्यादा हैं। अब और आगे चले, हमारी जितनी शक्ति आत्मा में रहती है उसकी 90% अंतर्मन में, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं इसे, आपको ये अंग्रेजी का शब्द भी आना चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है चेतन मन जिसे हम सोच रहे हैं, इसमें 10% शक्ति यूज होती है और अंतर मन में सब कॉन्शियस माइंड में 90% शक्ति रहती है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक शब्द और है, जानते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड को, शास्त्रों में भी और बाबा की मुरली में भी एक शब्द आता है हमेशा, चित्त। चित्त की व्याख्या कोई कर नहीं पाया आज तक, किसी को समझ में नहीं आया चित्त क्या होता है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, बिल्कुल सहज रूप में अंतर मन को चित्त कहते हैं। अब देखो और आगे चलो, जब हमारा मन शांत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन जग जाता है, और उस समय अंतर मन को हम जो संकल्प देंगे या जो चित्र देंगे विजन, उसको अंतर मन स्वीकार कर लेता है, और अंतर मन की जो 90% शक्ति है वो उसे करती ही है, उसमें पावर है सब कुछ करने की। क्लियर है, 90% शक्ति अंतर मन में, जब मन शांत हो जाए तब अंतर मन जागृत हो जाता है, और उस समय हम जो संकल्प या जो चित्र विजन अंतर मन को दिखाएंगे यानी अपने को देंगे, अंतर मन उन्हें स्वीकार कर लेता है, और अंतर मन में शक्ति है वो सब कुछ करने की। एक शब्द और जोड़ दे इसमें, जो कुछ हम संकल्प दे रहे हैं उसमें यदि हमारा संपूर्ण विश्वास हो तो वो होगा ही। अंतर मन की शक्ति विश्वास जहां है वहां संपूर्ण रूप से काम करने लगती है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ बातें कहूंगा जो बाबा की हैं और बाबा हमें रोज सिखाते हैं, उससे आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अब देखो, जब हम रात को सोने जाते हैं, जब हमें नींद आ रही है बिल्कुल नींद, तब हमारा मन शांत हो जाता है ना, तो हमारा अंतर मन पूरी तरह जग जाता है। इसलिए सबको पता होना चाहिए रात के समय हमारे अंतर मन में सबसे ज्यादा शक्ति है रोगों को ठीक करने की, इसको हीलिंग पावर कहते हैं। इसलिए आप सोते समय जब आपको नींद आ रही है, यदि वो संकल्प कर दो जिस रोग से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो रात को अंतर मन आपको उस रोग से मुक्त कर देगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये, आप करेंगे इसका अभ्यास, बहुत बहुत अच्छे अनुभव। मैंने बहुत जगह करा दी है, मान लो आपको तेज बुखार रहता है, आप सोते समय संकल्प कर दो मैं बुखार से मुक्त हो गई हूं, भाषा ये, मैं बुखार से मुक्त हो गई हूं। मान लो किसी को, आपके पास कोई बुजुर्ग माता आ जाती है और कहती है मुझे हार्ट की तकलीफ हो रही है, हो जाएगी ऐसा कुछ है, तो आप उसे सिखा दो सोते समय वो संकल्प करे, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा हार्ट मजबूत है। भाषा पे ध्यान देना है, तो उसको बीमारी होगी ही नहीं। ये आप सभी ध्यान दें। अब देखो मैं क्या क्या सिखाता हूं आजकल लोगों को, आप भी सिखाते रहना। किसी का मन बहुत परेशान है, मेरे पास आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, आजकल मन परेशान रहता है, कारण कुछ नहीं है। अब कारण तो हम जानते हैं ना, क्या कारण है बताओ? एक तो निगेटिव, दूसरा जन्म जन्म के पाप का इफेक्ट। बहुत केसी जब ये हो रहे हैं, किसी को डर लग रहा है, छुपा हुआ भय, किसी को पता नहीं क्यों, किसी का मन परेशान हो रहा है, किसी का मन उदास, किसी का डिप्रेशन में, खुशी नहीं, ये है पाप कर्मों का इफेक्ट, सूक्ष्म इफेक्ट काम कर रहा है। मैं उन्हें दो चीज सिखा देता हूं सवेरे उठते ही। दूसरा, हमारा अंतर मन सवेरे जागृत रहता है। पहला 10 मिनट जब हम आंख खोलते हैं, पहला 10 मिनट हमारा अंतर मन जागृत है। जीवन का सबसे मूल्यवान समय है रोज सवेरे 10 मिनट। आप इसका अगर आनंद लेने लगे तो आपके जीवन की यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। तो मैं क्या सिखाता हूँ, उठते हुए 2 संकल्प करो, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, सबसे अधिक सुखी हूँ। किसी किसी की तो परेशानी एक दिन में समाप्त हो जाती है। दिन में भी कर सकते हैं ये संकल्प, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तब भी हमारा मन शांत हो जाता है ना, तो अंतर मन जग जाता है। कोई आपसे पूछ सकते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तभी दुनिया भर के संकल्प आते हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे, जो कभी हुआ भी नहीं, न जाने हम क्या क्या सोचते रहते हैं। उसका कारण यह है कि जैसे ही हम योग में बैठे हमारा मन शांत हुआ, अंतर मन जग गया, अंतर मन में जो भरा है वो निकलने लगा। स्वप्न भी यही है। तो सवेरे उठकर आप वो संकल्प अपने मन को देने लगो जो आप जीवन में चाहते हैं। मैं टीचर्स बहनों को एक चीज के लिए बहुत सावधान करता हूं। मान लो कहीं आपको सेंटर पे भेजा जा रहा है, दीदियों ने कहा भाई वहां नहीं सेवा है, अब वहां जाओ सेवा करो, कोर्स कराओ, क्लास बढ़ाओ। कई लोग क्या मान बैठते हैं कि वहां की भूमि तो बहुत कठोर है, सेवा बढ़ती नहीं। आपको 2-4 लोग कह भी देंगे, अरे तुम वहां जा रही हो, वहां तो 4 बहनें पहले गई हैं, सेवा बढ़ी नहीं, सब वापस आ गई। क्या करना चाहिए? आप संकल्प करो। ये संकल्प गलत है, क्योंकि पहले ही सोच रहे हैं वहां सेवा नहीं बढ़ती है तो नहीं बढ़ेगी। एक बात लिख लें आप अच्छी तरह, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं। याद रखना, अपनी डायरी के पहले पेज पे लिख लेना इसको, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं, यानी वही होगा। भाई वहां जा रहे हैं वहां तो सेवा बढ़ती ही नहीं, हम भी जब घर से जाएंगे अपना बोरी बिस्तर उठा के तो किस संकल्प से जाएंगे? थोड़े दिन में आना पड़ेगा, वहां तो सेवा बढ़ती नहीं है, पहले ही प्रोग्राम बन जाता है मन में, अब थोड़े दिन में इनकी तरह हम भी वापस आ जाएंगे, वहां सेवा नहीं बढ़ेगी। संकल्प चेंज करो, जो काम कोई नहीं कर सका वो मैं करूंगी, जहां मैं जाऊंगी रेगिस्तान में भी फूल खिलेंगे। संकल्प करो ना आप, संकल्प करने में कुछ बिगड़ रहा है क्या, या पैसे खर्च हो रहे हैं? संकल्प करो, वहां सेवा बढ़ेगी, देवता धर्म की जो भी आत्माएं वो सब आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? देवताओं को तो आना है ना। हम ये संकल्प करके कि वहां सेवा नहीं बढ़ती, हमने देख लिया नहीं बढ़ेगी, हम फाइनल स्टैंप भी लगा देते ना, वहां सेवा नहीं बढ़ेगी, तो माना हम देवता धर्म की आत्माओं को रोक देते हैं, ना आओ अभी नहीं आना। ये बड़ी सूक्ष्म गति है संकल्प के वाइब्रेशंस की। अब एक दूसरी चीज, बहुत सुंदर चीज है, ध्यान से सुन लेंगे, अभी से अपना लेना। अब रोज सवेरे या शाम को एक विजन देना अपने को, भले आंख बंद करके देना विजन, कि 6 मास के बाद, टाइम भी देना 6 मास के बाद मैं मुरली सुना रही हूं, बहुत सुंदर हॉल है, 100 भाई बहने बैठे हैं, 2 साल के बाद मैं मुरली सुना रही हूं, 500 बैठे हैं, क्यों कम करते हो, आपके 5 ही आएंगे, 500 करो ना, संकल्प करो, अब देखना इसका परिणाम। सेंटर का चित्र दिखा देना अपने अंतर्मन को, ऐसा सेंटर है हमें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये नहीं कल है, ये गलती ना कर देना आप कि कल ही हमारे पास ऐसा सेंटर है, उसमें आपको कठिनाई भी हो सकती है। मैं एक उदाहरण बता देता हूं कठिनाई का, मैं ये क्लासेस 5 साल से लगभग कराता हूँ, जितना जितना मुझे ज्ञान होता गया और अनुभव होते गए, अब ज्यादा अनुभव हो रहे हैं लोगों के साथ, तो मैंने कुमारों की एक क्लास कराई थी, ये तो एक कुमार बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसने अपने अंतर मन को विजन दे दिया, 6 मास में मैं ऐसा संपूर्ण पावन बन गया हूं। अब वो हो गया परेशान, क्योंकि उसके अंतर मन एक्टिव हो गया, जागृत हो गया, और उसने उसको 6 मास में संपूर्ण पावन बनाने की दृढ़ता ले ली अंतर मन ने। अब उसके अंदर की संपूर्ण पवित्रता बाहर निकलने लगी और वो दुखी हो गया। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर का मेरे से प्रश्न पूछा, 3 ही मास हुए थे कि आपने तो बताया था, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूं, कहां गलती हुई है। तो मैंने उसका सुना और मैंने बताया, तुमने समय गलत दे दिया, क्या कोई 6 मास में संपूर्ण पावन बन सकता है, तो भगवान को 100 साल क्यों लगाने पड़ते, रोज इतना पढ़ा रहा है सिखा रहा है तो भी आत्माएं पावन नहीं बनती। मैं कहीं समय गलत दे दिया, इसलिए अंतर मन जोर से एक्टिव हो गया, जोर से, तो तुम्हें बेचैनी भी, उसका मन उदास हो गया, मन परेशान रहने लगा, न जाने क्या क्या होने लगा, उसको दिमाग फट जाएगा। अब कहने लगा, अब इसको ठीक करने का तरीका, अब ये गलती तो हो गई। अब तब तक मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं था इन चीजों का, मैंने कहा भाई मैं सोचूंगा तुम्हें। फिर मैंने उसको कहा कि कैसेट पे जैसे दूसरा रिकॉर्ड कर देते हैं तो पहला खत्म हो जाता है, आप इस पे 7 दिन तक दूसरा संकल्प दो कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है 10 साल में, 10 साल, बस 7 दिन में शांत हो गया उसका सब कुछ। तो आप एक विजन देने लगो अपने पुरुषार्थ के लिए भी, मान लो आप देखते हैं कि मुझे ऐसा संपूर्ण फरिश्ता बनना है, एक चित्र दिखा दो अपने अंतर्मन को ऐसा फरिश्ता, और इतने समय में, तो आपके पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी, और यह भी संभव है कि उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं हटने लगे, उससे आपको थोड़ा कष्ट भी हो, उसके लिए भी तैयार रहना। मैं आपको एक और अनुभव सुनाता हूं बाबा का, उससे आप एक सुंदर चीज समझ सकेंगे जो बहुत सुंदर है अंतर मन के लिए। दादी जानकी ने सुनाया अपना अनुभव कि वो छोटा हॉल है ना मधुबन में, स्त्री हॉल, साइड से जो बरांडा है, पीछे कमरे होते थे दादियों के, वो अपने कमरे में जा रही थी दिन में, तो क्या देखा, ब्रह्मा बाबा अकेला अंदर डांस कर रहा है, तो इनको हिचक भी हुई और ये रुकना भी चाहती थी, देखने में मजा आ रहा था बाबा डांस कर रहा है, ये बिना ट्रेनिंग का डांस होता है, जो असली डांस होता है ना, आत्मा जिसमें आनंदित होती है, तो बाबा ने इसको देख लिया कि जनक तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाबा को लगा ये कहाँ से आ गई, मेरे डांस को डिस्टर्ब कर दिया। तो कहा बाबा आप डांस कर रहे थे। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ रहा था कि मैं क्या बनने वाला हूँ, बाबा राजा ही देगा, ऐसा नारायण बनाएगा मुझे। अब देखिए मनोविज्ञान में, अंतर मन के विज्ञान में ये बहुत बड़ी थ्योरी है कि जो कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो ऐसा फील करो कि वो प्राप्त हो गया है और उसका आनंद लो। जैसे ब्रह्मा बाबा, नारायण बना नहीं था अभी लेकिन बनने वाला हूँ, उसे ऐसा फील हो रहा था अभी बन गया हूँ और वो उसका आनंद ले रहा था। याद रखना आप ये उदाहरण, लौकिक अलौकिक सेंटर की चीज, सेवाओं की चीज, आप जो भी चाहते हैं इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और विजन बताता हूँ आपके काम की। मान लो आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनने की इच्छा है, किस किस को है हाथ उठाओ। अच्छा बहुत अच्छा, अब करना आप ये काम, स्पीच देने की प्रैक्टिस तो करना। हम लोगों को भी सिखाई थी, दादी ने सिखाई हम लोगों को, तो मैं तो 69 में सीखी थी, 3 बार बस मौका दिया फिर आ गया सब। तो एक तो डर निकालना होता है, एक अच्छा अच्छे पॉइंट्स हमारे पास हो, लैंग्वेज अच्छी हो, और शुरू में तो आप वो बोलें जो आपने तैयार किया है। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे कि तैयार किए बिना बोलना है, तो आप वो बोलेंगे जो सुनने वाले सुनना चाहते हैं, आपे ही होगा ये आपसे। तो मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ, छोटे छोटे विजन आप चलाना आपसे कि 6 मास के बाद, 6 मास में मैं एक स्कूल में हूँ, वहां पर 1000 बच्चे बैठे हैं और मैं स्टेज पे फर्स्ट क्लास भाषण कर रही हूँ, बच्चे बार बार ताली बजा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उसका आनंद लेना, आप भी आनंद लेना। फिर और संकल्प देना, अब अगले 2 साल के बाद मेरे सामने कॉलेज के सारे प्रोफेसर बैठे 1000 और मैं बहुत सुंदर भाषण कर रही हूँ और सभी मगन हो गए हैं, वाह वाह कर रहे हैं, पैरों में आके हाथ लगा रहे हैं, वाह आप तो इस देवी हो। देखना ये चित्र, देखना आप समय देना, वो चित्र दिखा देना अपने अंतर मन को, समझ गए ना। कोई भी चीज जो आप प्राप्त करना चाहती हैं, योग अभ्यास बढ़ाना अपना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये स्वमान बढ़ाना, क्योंकि इससे मन की शक्तियां बढ़ेंगी ना दोनों की। और फिर ऐसा विजन देना, पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी शक्तियां नष्ट न हो रही हों। शक्तियां नष्ट एक ही चीज से होती हैं, बस ज्यादा तो सोचने की जरूरत नहीं, संकल्प। ऐसे वैसे संकल्प चल रहे हो, टकराव हो गया हो, किसी ने इंसल्ट कर दियो, फीलिंग आ गई हो, हमें क्रोध आ गया हो, हम बुरा बोल रहे हो, इन सब से शक्तियां नष्ट होती है, इसका बहुत ध्यान रखना। सवेरे उठकर आप एक प्लान बना लो, अब रास्ते में बना लेना, सवेरे उठकर हम क्या क्या संकल्प करेंगे। पहले 10 मिनट भले ही बस बाबा को गुड मॉर्निंग करके आप केवल संकल्प उठाना अच्छे अच्छे, और बाबा को थैंक्स देना। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है, बाबा आपने मुझे वरदान दिया है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक चीज याद करना, शुक्रिया देना। दूसरा संकल्प, मेरा जीवन विघन मुक्त है, बाबा से जोड़ देना, बाबा आपने मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त कर दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। सवेरे उठ के अच्छे अच्छे संकल्प करना, समझ गए ना। मैंने बहुतों को सिखा दिया, क्रोध की गिफ्ट दी थी ना बाबा को, तो बहुतों की तो वापिस आ गई, तो मैंने उनको 2 चीजें सिखाई। सवेरे उठ के मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है। 7 बार आप सिखाएंगे ये, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है। बिल्कुल चित्त शांत होगा, आपको टेंशन रहने लगे, मैं तनाव मुक्त हूं। आपका मन चिड़चिड़ा रहने लगे, मैं संसार में सबसे अधिक खुश नसीब हूं, खुश नसीब। तो हमारे अंदर ये सब गुण है ना, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वो सब अभी भी बीज रूप में हमारे पास है, वो जागृत होते रहेंगे। ये तरीका है अपने जीवन की यात्रा को सरल करने का। एक विजन और मुझे याद आ रहा है तो बड़ा, पर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी बात, सेवाओं में मान लो आप कुछ सेवा करना चाहती हैं और दूसरे लोग उससे सहमत नहीं हैं, तब क्या करेंगे? अपना विचार छोड़ के हल्के रहना चाहिए, या संघर्ष की आवश्यकता नहीं कभी भी जीवन में, क्योंकि सेवा का फील्ड ऐसा है कि ये सेवा, सारी ही सेवा ऊपर से हो रही है, नीचे वालों से नहीं, ये पक्का कर दो आप। इसलिए सेवा को कहीं भी संघर्ष नहीं बनाना है। मैं बहुत जगह देखा करता हूं और हंसी में एक बात कहता हूं। अभी मैं सूरत में गया, एक बहन मेरे को फोन कर रही, मेरे सेंटर में जरूर आना, जरूर आना है। हम लोग उसके सेंटर में भी गए तो लास्ट में क्या पूछती कि भाई साहब, हमारी ये बहन बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, भोली भाली, पूछते हमारी क्लास में सारे ये पढ़े लिखे भाई बहने आते हैं, अगर हमें पर्चे बटवाने हो तो किसको कहें हम, बड़ी मुश्किल है, कोई तरीका बताओ जो बिना पढ़े लिखे भी आए। कितनी जगह बहने बहुत पढ़ी लिखी, जिसे आजकल की भाषा में हाई फाई भी कहते हैं, आने वाले स्टूडेंट भोले भाले, पढ़े लिखे नहीं। मैं देखता रहता हूं ये सब साक्षी होके, तो मैं सोचता हूं कि वाह प्रभु तेरी लीला, सब काम सचमुच ऊपर से हो रहा है। मैं कहा नीचे वाले तो ऐसे ही उछल कूद कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया, सच तो ये है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल सत्य है कि ये खेल ऊपर से, रिमोट कंट्रोल वहां है या नीचे वालों के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए महत्व देना है अपनी स्थिति को। सेवाएं तो होती ही रहेंगी, कोई करे या ना करे तो भी सेवा होती रहेंगी। अब मैं वो एक बड़ी और लास्ट विजन आपको दे देना चाहता हूं और आप सब करना। देखो जब विनाश होगा, होगा तो जरूर या नहीं होगा, ये ना सोचने लगना हो ही नहीं रहा, होता ही नहीं, बहुत देर हो गई, होता ही नहीं, होगा वो तो बाबा हमें तैयार कर रहा है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं आजकल, ब्राह्मण विनाश ही नहीं होता, जैसे दुखी हो रहे हैं वो विनाश नहीं होता, और जब विनाश होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। अभी टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गए, एक भाई का फोन आया, मुझे पसीना आ रहा था, मैंने जो रुमाल से पसीना पहुंचा, चमड़ी भी उतर गई, सनबर्न कहते हैं, सनबर्न, धूप से जल गए, कट जल गए सब लोग। यहाँ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले साल ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। सोचो आप, तो विनाश ऐसे ही थोड़ा ही कोई खेल है, जब वो होने लगेगा तो इस संसार में बाबा कहा करते हैं, हाहाकार हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। तो आप सीन इमर्ज करना, विनाश का काल है, चारों ओर विनाश हो रहा है, मैं खड़ी हूं और मेरे चार ओर के लोग मुझ में दुर्गा को देख रहे हैं, मुझसे दुर्गा दिखाई दे रही है। जो भी खड़े हैं 10, 20, 50, 100, अगर आप ये विजन कुछ दिन तक रोज देंगे तो यही होगा। आप कोर्स देने के लिए विजन बना सकती हैं, कोर्स आपको देना, पहले विजन बना दो, जिसे भी मैं कोर्स दूं और मेरी दृष्टि उस पर पड़े वो मुझे अपनी इष्ट देवी देखे। हर एक की अलग अलग होती है ना इष्ट देवी, लेकिन इन सब के लिए आपको योग, स्वमान और व्यर्थ से मुक्त, ये तीन चीजें बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी। आप इसका कारण समझिए, क्योंकि ये सब काम अंतर मन की शक्ति से होंगे। उसको जितना हम पावरफुल रखेंगे योग से, स्वमान से और व्यर्थ मुक्त, उतना ही आप देखेंगे कि संकल्प आपके सफल हो रहे हैं, संकल्प फलीभूत। संकल्पों से ही आप आत्माओं का आह्वान कर लेना। देखो मेरे को 1000 अनुभव हो गए होंगे, 1000, मैं सबको पक्का कराता हूँ। आजकल पब्लिक प्रोग्राम में जाता हूँ मैं, तो जितने भी सब भाई बहने होते हैं मैं पक्का कराता हूँ कि संकल्प करो, जितनी हॉल में कुर्सी डाली हैं आज सभी भर जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, देवता कुल की सभी आत्माओं आ जाओ, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। वैसा ही होता है, नहीं तो क्या होता है, आधे लोग सोचते रहते हैं प्रोग्राम तो कर रहे हैं पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं, और वो इसको अपना बड़ा अच्छा संकल्प समझते हैं, समझदारी कि पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। संकल्प ये करो, इतने लोग आएंगे हॉल फुल बाहर खड़े होंगे, वैसा ही होगा। मैं हर जगह ये कराता हूं, अभी भी इस यात्रा में मैंने कितनी जगह यही कराया होगा, भव्य भव्य प्रोग्राम हुए, भव्य जिन्हें मैं कहूंगा ना भव्य। हिमालय में थे हम एक जगह, पहली बार प्रोग्राम हुआ वहां, पहली बार, डिसर्विस भी हो गई थी, लोग कम आ रहे थे, हमने सबको तैयार कराया ये संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, देवी देवता कुल की जो भी आत्माएं हैं आज प्रोग्राम में सब आ जाओ, एक भी सीट खाली न रहे। वैसा ही हुआ। तो आप अपने संकल्पों का प्रयोग करना बहुत अच्छा, और जीवन की यात्रा बहुत सुंदर है। अपने जीवन को खुद सुंदर बनाना, ये बाबा की गिफ्ट है जीवन, और वो बात याद रखना, निर्णय लिया एक बार बस फाइनल निर्णय है वो, कुछ भी हो जाए उस निर्णय से हम पीछे नहीं हटेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे, और वो पाकर ही रहेंगे जिसके कारण ये निर्णय लिया है हमने। हम सारे संसार को अपनी श्रेष्ठ स्थिति से अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाएंगे। ओम शांति।